तब तब कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान, तप से मिलता जीवन का सुख, तप से मिलता जीवन दान। तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है। तपस्या सभी के दिलों की दुआ है, तपस्या बिना योग जीवन भी क्या है, जीवन भी क्या है। योग साधना से आए दिल में उदारता, योग साधना से आए दिल में उदारता, तपस्या ही जीवन में लाती मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता। तपस्या ही जीवन को बनाए फरिश्ता, प्रभु से जुटाए हर संबंधों का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता। तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से कर्मों में आती है दिव्यता, तपस्या से जीवन में आती है मधुरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता, तपस्या ही जीवन की है सच्ची सुंदरता।
ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय ब्रह्मा कुमारी शीलू दीदी जी उपस्थित हैं। आप सभी दीदी जी को पहचानते हैं जो डायरेक्टर हैं इस भट्टी के भी। अभी ये जो पांडव भवन की भट्टियां चल रही हैं वो भी उसका प्रबंधन भी आप ही करते हैं, जिसके कारण आपको ये चांस मिला है। दीदी जी वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका हैं, राजयोग शिविर माउंट आबू के आप डायरेक्टर हैं, टीवी चैनलों में एक प्रवक्ता के रूप में आपके कार्यक्रम आते हैं, महासम्मेलनों में भी आप एक बहुत अनुभवी वक्ता के रूप में अपना अनुभव रखते हैं, आप अनुवादक भी हैं, तीन भाषाएं आपको आती है, हिंदी अंग्रेजी और सिंधी, आप धारा प्रवाह बोल पाती हैं, तो आप इंटरप्रेटर भी हैं, और राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन माउंट आबू के शिक्षा प्रभाग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं। बाबा की सेवा पांचवें महाद्वीपों में आपने 100 से भी अधिक देशों में भ्रमण किया है और बाबा की सेवाएं की हैं। 1960 में 12 वर्ष की कोमल आयु में आपको बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ। आप पढ़ाई के साथ राज्यों का अभ्यास भी करते रहे। मुंबई विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट हुए और 1969 बाबा के अव्यक्त वर्ष में 21 वर्ष की आयु में आपने अपने जीवन को बाबा की सेवा के लिए समर्पित किया। 1970 से 74 तक आप बेंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद, मुंबई में अपनी सेवाएं प्रदान की और फिर 1974 से जब विदेश की सेवाएं शुरू हुई तो 2 वर्ष तक बाबा ने दादियों ने आपको अफ्रीका, मॉरिशस ईश्वरीय सेवा के लिए भेजा। तो आप चक्रवर्ती राजा बन के सब जगह सेवाएं करती रही और फिर 1976 से जब बाबा ने आपको वरदान दिया था कि हर की पौड़ी जहाँ पे सब आत्माएं आएंगी, तो पहले आप ज्ञान गंगा बन बह के सेवाएं की और फिर 1976 से मुख्यालय माउंट आबू या आबू राज में स्थायी रूप से रहकर राजयोग शिविरों का सकुशल संचालन कर रही हैं। और 57 इयर्स में आप अंदाज लगाए कि कितने लाखों लोगों को आपने बाबा का बनाया है। ताली तो बनती है, 57 इयर्स तो बहुत होता है। तो आपने सभी वर्गों की सेवा की, वैज्ञानिक, व्यापारी, न्यायविद, राजनीतिज्ञ सभी। आपने साकार मम्मा बाबा की पालना ली हुई है। मुंबई में बाबा मम्मा का आना होता ही था। स्पेशली दीदी ने मैनेजमेंट कोर्सेज के द्वारा कॉरपोरेट्स की भी खूब सेवाएं की हैं। आपकी स्पष्ट, तार्किक, आत्मिक स्नेह और आध्यात्म रस पूर्ण वाणी के कारण राजयोग प्रवचन माला, राजयोग कमेंट्री तथा कई आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन रिकॉर्ड किया और हजारों लोगों के दिल को छुआ। आपने रेडियो, टीवी तथा समाचार पत्रों के द्वारा भी योगी जीवन की सुवास को सर्वत्र फैलाया है। जब प्राइवेट चैनल स्टार्ट हुए थे तब जी टीवी, सोनी टीवी, संस्कार, आस्था चैनलों में आपके ही कार्यक्रम प्रसारित होते थे। वर्तमान समय आपके प्रवचन पीस ऑफ माइंड चैनल में नियमित रूप से आते रहते हैं और हेडक्वार्टर में जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उसमें आप एक कुशल प्रवक्ता हैं। 2023 में आपको वुमेन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। दीदी की सेवाएं तो अथाह है, लेकिन दीदी जी इतना ही दीदी के लिए कहना चाहेंगे, ज्ञान की गंगा बनकर जो हर दिल तक पहुंच जाती है, मुरझाए हुए जीवन में नई उमंग जगा जाती है, त्याग, तपस्या, सेवा जिनकी सच्ची पहचान है, ऐसी महान दीदी आप पर हम सबको अभिमान है, हम सबको अभिमान है। हर मुस्कान में ममता, हर वाणी में अमृत का सार है, हर कदम पर प्रेरणा, हर कर्म में शिव का प्यार है, जो स्वयं दीपक बनकर जग को राह दिखाती हैं, वो आदरणीय शीलू दीदी जी आध्यात्मिक जगत की सच्ची महारथी कहलाती हैं, महारथी कहलाती हैं। तो रिक्वेस्ट है आदरणीय दीदी जी से। शरीर का नाम सोनू बहन है। यहाँ नजदीक राजस्थान में रानी करके एक स्थान है, 130 किलोमीटर दूर, तो वहीं पे बाबा ने सेवा के अर्थ निमित्त बनाया हुआ है। 30 वर्षों से अधिक हो गया बाबा के सेंटर पे समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, अलौकिक माता पिता की कर्म भूमि, सभी दादियों की तपस्या भूमि, जितनी महिमा गाएं उतनी कम इस मधुबन भूमि की है। तो प्यारे बाप दादा, सभी दादियाँ, सर्व मधुबन निवासी सबकी तरफ से और मेरी तरफ से भी आप सभी भाई बहनों का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस ग्रुप में अलग अलग स्थानों से आए हैं। बड़ा ग्रुप तो गुड़गांव का है। गुड़गांव वाले हाथ उठाएं। गुड़गांव हमारी सुदेश बहन, सुदेश बहन है गुड़गांव। और दूसरा बड़ा ग्रुप है कुल्लू से, हमारी किरण बहन है। कुल्लू के भाई बहन ने हाथ उठाए। और मंडी से भी कोई आए है, मंडी से भी कोई आए है, उनका नाम तो था। अच्छा, कोई गुजरात से आए है, गुजरात से भी आए है, मोरबी और जी अमरेली, मोरबी, गुजरात से आए हैं। जो पंजाब से आए हैं, कोई पंजाब से भी आए हैं, मंडी से आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, इंदौर से भी आए हैं कोई, हाँ इंदौर से भी आए, और कहाँ कहाँ से आए हैं जी, और राजस्थान से भी आए हैं, कई स्थानों से, रानी से भी आए हैं। हाँ, जो राजस्थान, अन्य राजस्थान के स्थानों से आए हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा अच्छा, और कहाँ से आए, और कौन सा स्टेट से आए, मीरठ से भी कोई आया है नहीं जी? अच्छा, सभी हो गया तो बहुत अच्छा। पांडव भवन में भट्टी करना, ये तो बहुत बहुत बड़ा भाग्य है। सब तरसते हैं हम पांडव भवन में भट्टी करें, क्योंकि जब से ज्ञान सरोवर शांतिवन बना तब से अधिकतर वहीं रहना होता है। जब भी भाई बहने आते हैं शांतिवन में तो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, ज्ञान सरोवर में भी विंग्स के प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ भी आना होता है, लेकिन पांडव भवन में कम रहते हैं, आते हैं चार धाम की यात्रा करके जाते हैं। तो मधुबन के चार धाम ब्रह्मा बाबा के, वो तो आकर्षण के केंद्र है ही, लेकिन आते हैं भाई बहने और फिर चक्र लगा के वापस जाते हैं, यहाँ कम रहते हैं। तो जो भाई बहने पांडव भवन में पहली बार रह रहे हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, इतने सारे, अच्छा, जो पहले भी रहे हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, वो भी है। जो पिछले 30 साल से ऊपर ज्ञान में है वो हाथ उठाएं। 30 साल से ऊपर, अच्छा, जो 20 और 30 साल से ज्ञान में है वो हाथ उठाएं। अच्छा, जो 10 और 20 साल के बीच में ज्ञान में है वो हाथ उठाएं। अच्छा, वो भी है। जो 5 और 10 के बीच में वो ज्ञान में आया, हाथ उठाएं। और जो 5 से कम सालों से ज्ञान में है वो हाथ उठाए, वो भी थोड़े हैं, बाकी काफी पुराने हैं। सब टीचर्स बहने हाथ उठाएं। हाँ, पीछे पीछे टीचर्स बहने बैठी है, आगे आ जाएं, क्योंकि ये बहनों, टीचर्स बहनों का स्थान आगे है, यहाँ आकर के बैठे। जो भी टीचर्स बहने पीछे बैठी है सब आगे आ जाएं। सब आगे आ जाएंगे यहाँ, नहीं नहीं माताएं बैठी रहिए, आगे आ जाएंगे यहाँ, यहाँ आ जाइए आगे। तो आप सभी भाई बहने बहुत ही भाग्यशाली हो जो यहाँ पांडव भवन में ये अगले 3, 4, 5 दिन बिताएंगे। और यहाँ का जो वातावरण है उसका लाभ लेंगे। और वैसे तो बरसात का मौसम है, पर इस साल लगता है कि बारिश कम पड़ेगी, तो आप लोगों के लिए तो अच्छा ही है, हा? नहीं तो बारिश में तो काफ़ी तकलीफ भी होती है। दूर अलग अलग स्थानों से पांडव भवन में आते हैं अमृत वेले, लेकिन यहाँ सवेरे फॉग बहुत होती है, सवेरे सवेरे ऐसे लगता है जैसे सूक्ष्म वतन में घूम रहे हैं, क्योंकि पहाड़ है यहाँ तो थोड़ी ठंडी भी होती है। तुझ गर्म कपड़े भी कुछ लाए होंगे या नहीं? लेकर आए, क्योंकि पहाड़ पर आना माना कुछ तो गर्म कपड़े भी चाहिए। लेकिन अवश्य ऐसे भी भाई बहने होंगे जिनका प्रोग्राम आने का था लेकिन ऐन मौके पर किसी कारण से उनका कैंसिल हो गया, वो भी होंगे जो नहीं आ सके, और वो भी होंगे जिनका कोई प्रोग्राम नहीं था लेकिन लास्ट मिनट उनको कहा गया कि आप लोग चल सकते हो, तो वो भी होंगे, वो हाथ उठाए। अच्छा, वो भी है, लास्ट मिनट तैयार हो गए और आ गए स्टेशन पर, तो वो भी हैं। तो हम तो यही कहते हैं जो पहुंच गए वो बहुत 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 भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं समय कितना नाजुक होता जा रहा है। ये भी जो सेवाएं अभी चल रही है ये भी कितना समय और इस प्रकार चल पाएगी, वो भी कई बार प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि कहाँ तक होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन चारों ओर दुनिया का माहौल तो बहुत ही बिगड़ता जा रहा है। सब तरफ से कितना भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, न जाने कितने बुरे आचरण संसार में हो रहे हैं। इसलिए बाबा इस कलयुगी दुनिया को कितने नामों से कहते हैं, 7 प्रकार के नरक बताते हैं, और बाबा कहते हैं यही वो नरक है। कुंभी पाक नरक कहो, विषय वैतरणी नदी कहो, जो भी बाबा नाम देते हैं इस कलयुगी दुनिया के लिए, वो हम चारों ओर देख रहे हैं। लेकिन बाबा ने यह बेहद का महायज्ञ रचा है, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, और बाबा कहते इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है, और कैसे हम बच्चे तैयार हो जाएंगे नई दुनिया के लिए, तो इस कलयुगी दुनिया का विनाश होगा। कई पूछते हैं ना कब होगा विनाश, कब होगा विनाश, तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे तैयार नहीं हुए हैं, बच्चे तैयार हो जाए तो विनाश तो अभी हो जाए, हाँ, लेकिन बच्चे तैयार नहीं हुए हैं। तो विनाश न होने का कारण कौन है? हम बच्चे। तो हम बच्चे कब तैयार होंगे फिर बाबा हमसे पूछते हैं, हम बाबा से पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा, तो बाबा कहते हैं बच्चे तैयार हो जाए, तो फिर बाबा बच्चों से पूछते हैं कब तैयार होंगे। तो अब हम बाबा से अभी पूछना बंद करें ना, हम बाबा को तो नहीं कहेंगे बाबा विनाश कब होगा, अपने आप को देखना मैं कब तैयार होऊंगा, क्योंकि मेरी तैयारी पूरी होगी तो प्रकृति भी तैयार है, वैज्ञानिक भी तैयार है, राजनेताएं भी तैयार है, विनाश करने लिए तैयार है। बीच बीच में युद्ध शुरू होती है, आग लगती है और फिर ठंडी हो जाती है, क्योंकि बच्चे थोड़े ठंडे हैं है ना, बच्चे थोड़े ठंडे हैं, तो इसीलिए न्यूज़ तो आती रहती है परंतु फिर सोच चलता है कि पता नहीं कब, पता नहीं क्या। तो बाबा ने तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। बाबा कहते हैं ना यज्ञ क्यों रचते हैं, जब कोई आपत आती है, तो अभी तो बहुत बड़ी आपत आने वाली है दुनिया में, और यज्ञ में स्वाहा 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 करते हैं, तो हम बच्चे अपनी बुराइयों को स्वाहा करते इस यज्ञ में, तो विनाश ज्वाला जल्दी भड़कती है। हम ठंडे होते तो वो अग्नि भी ठंडी हो जाती है, इसीलिए हम किसी और को दोष नहीं दे सकते, किसको दोष देना है, खुद को जी। तो आप सब जब आए तो आते ही अकोमोडेशन आपको मिली होगी, और साथ में हम कहते हैं ये विजय माला आपको मिली होगी पहनने के लिए, विजय माला है ना ये, ब्लू कलर की विजय माला और एक ठप्पा लगा दिया वो बैज जो आपको मिला। तो आपने पढ़ा होगा इस बैज पर क्या लिखा है, पढ़ो माता जी पढ़ो क्या लिखा है, एक डबल लाइट योग साधना तपस्या भट्टी। तो आप किस लिए आए हो, योग साधना तपस्या भट्टी में आए हो डबल लाइट स्थिति का अनुभव करने के लिए। तो डबल लाइट स्थिति का अनुभव कैसे करेंगे, जब इतने हल्के होंगे, हल्के होंगे तभी तो डबल लाइट कहलाएंगे ना। इसलिए जब हवाई जहाज में भी उड़ान भरते हैं तो उसके लिए भी कहते हैं कि वजन कम लाओ, 15 किलो से ज़्यादा वजन नहीं ला सकते हैं, हाथ में केवल 7 किलो वजन ला सकते हैं, भारी भारी वजन नहीं ला सकते क्योंकि उड़ना है। तो हम बच्चों को तो कहाँ तक उड़ना है, परम धाम तक उड़ना है। तो हम अगर भारी होंगे तो कैसे उड़ेंगे। तो हम आत्मा किस बात से बोझ वाली बन जाती है, व्यर्थ संकल्पों से बोझ वाली बन जाती है, अशुद्ध संस्कारों के वश होकर बोझ वाली बन जाती है, और अनेक पाप कर्म जो किए हैं उसके कारण बोझ वाली बन जाती है। तो बाबा कहते हैं ये बोझ खत्म करो। तो कैसे खत्म करो उसके लिए अलग अलग टॉपिक्स पर आपकी क्लासेस भी हैं, योग भी करेंगे आप और अनुभव करेंगे कि जब आप जाएंगे तो ज़रूर इतना ही हल्का होकर जाएंगे। तो या ऐसी तपस्या करनी है तो आपको बताया होगा ना, मुख का तो मौन रखना ही है क्योंकि जितना साइलेंस में रहेंगे उतनी शक्ति भरेंगे। और फिर मन का भी मौन रखना है, सोचने की दरकार ही नहीं है। माताओं को न खाना पकाना है यहाँ, हाँ नहीं तो सवेरे सवेरे उठते यही ख्याल चल जाए क्या खाना बनाए, बच्चों को भेजना है, पोते दोते माताएं तो है, दफ्तर जाना है भाइयों को या जिनको भी, तो सवेरे सवेरे से यही ख्याल चलता है। तो माताओं को या न भोजन पकाना है और न भाइयों को दफ्तर जाना है, हाँ न दुकान जाना है, बस यहाँ तपस्या करनी है। तो तपस्या करने के लिए आप सभी आए हो, तो मुख का भी मौन रखना है, मन का भी मौन रखना है और मोबाइल का भी मौन रखना है। तो हम कहते 3M इसका मौन रखना है। और क्या करना है, अपने अंदर शक्ति भरनी है, बस आत्मा को चार्ज करना है। बाबा का घर ये पावर हाउस है, यहाँ आत्माएं आकर अपने आप को चार्ज करती है। ये बाबा का घर सागर का कंठा है जहाँ बादल आकर के अपने आप को भरते हैं फिर जा कर के बरसते हैं, क्योंकि सारी दुनिया तो कलराठी हो गई है, बंजर हो गई है, तरफ रहे हैं आत्माएं, तरस खा तरस रही है परमात्मा को पाने के लिए, शांति के लिए, खुशी के लिए। हाँ थोड़ी सी शक्ति मिल जाए और बाबा कहते यहाँ तो भंडारा है, जितना चाहिए उतना यहाँ भर सकते हो अपने में, लेकिन उसके लिए बहुत ध्यान रखना है कि एक संकल्प, एक श्वास, एक घड़ी भी हमारी व्यर्थ न जाए। तो हर संकल्प श्वास घड़ी को हमको सफल करना है यहाँ रहकर, ये बहुत बड़ा लक्ष्य आपको रखना है, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है। हम ब्राह्मण बने ही हैं इसी लक्ष्य से आगे आए हैं ताकि वो उस लक्ष्य तक पहुँचे। तो एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है लक्ष्य। तो लक्ष्य तो कई होते हैं क्योंकि एक साल में इतना करना है, फिर 10 साल में इतना करना है, वो छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, परंतु उद्देश्य तो बहुत बड़ा होता है। तो बाबा ने हमें लक्ष्य भी दिए हैं और साथ साथ उद्देश्य भी दिया है। कई पूछते हैं ना आप लोगों की संस्था का उद्देश्य क्या है, तो हम एक वाक्य में तो इतना ही कहते हैं उनको कि इस संस्था का उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना। बहुत सिंपल शब्दों में ये कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना, ये हमारा उद्देश्य है। तो पहले खुद को बदलना है तब दुनिया को हम बदल सकेंगे, और दुनिया को बदलना है किस लिए, एक नई दुनिया लाने के लिए। हम सत्युगी दुनिया इस सृष्टि पर लाएंगे खुद को बदलकर। तो उद्देश्य तो हमारा बहुत ऊंचा है, लेकिन उसके लिए बाबा ने छोटे छोटे लक्ष्य दिए हैं। जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में आए तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था, है ना, किसको कुछ भी पता नहीं था। कई अनुभव सुनाते हैं हम कैसे इस ज्ञान में आए। किसी ने निमंत्रण दिया, कोई एग्जीबिशन देखी, कोई मेला देखा, किसी प्रोग्राम में गए, या कहीं दादी जी आ गए तो वो वहाँ पर हमें ले जाया गया, या कई कारण बताते हैं। तो वो कारण बन गया आपका इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने का। और जैसे आप आए तो पहले तो बहुत फॉर्म भरवाते थे, तो आपने निश्चय किया हम 7 दिन का कोर्स करेंगे। तो उसको इस फॉर्म में भी यही पूछा गया था, आपके यहाँ आने का लक्ष्य क्या है, आप यहाँ आए हैं किस लक्ष्य से आए हैं। तो कई अलग अलग जवाब उसमें लिखते हैं, कई कहते हैं शांति के लिए आए हैं, कई कहते हैं ईश्वर को ढूंढने लिए आए हैं, कई अलग योग सीखने आए हैं, कई चीज़ें, कई लक्ष्य बताते हैं। तो वो तो फिर 7 दिन का कोर्स करके समझ लेते हैं, और धीरे धीरे यहाँ के नियमों का भी पता चल जाता है, यहाँ की धारणाओं का पता चल जाता है, और जब इनका पालन करना शुरू कर देते हैं तो परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो जो हम शूद्र थे, शूद्र से ब्राह्मण बन जाते हैं। परिवर्तन, पहला परिवर्तन यही आता है जब नियमों पर धारणाओं पर चलते हैं, तो ये पहला परिवर्तन आता है जो एकदम शूद्र, क्षुद्र का शूद्र शब्द कहाँ से आता, क्षुद्र से एकदम गिरा हुआ, विराट रूप में टांगे तो एकदम नीचे। और बाबा हम बच्चों को एकदम टांग पैर से ले सीधा चोटी बना लेते हैं, ब्राह्मण बना लेते हैं। और ब्राह्मण कैसे बने, हम ब्रह्मा की मुख संतान बने, ब्रह्मा मुख वंशावली बने, ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे बने, शिव वंशी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाए। अभी भी पूछते ना आपका सरनेम क्या है, तो हम क्या कहते हैं, बीके, है ना, बीके, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कैसे बने, ब्रह्मा के दत्तक एडॉप्टेड बच्चे बने। शिव बाबा के बच्चे तो अनादि अविनाशी है ही है, लेकिन ब्रह्मा के बच्चे बने। और इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ चालू किया, यही किया ना हम सब ने। तो ब्राह्मण बनने के लिए बाबा ने बहुत नियम बताए, क्या क्या नियम बताए वो भी हमारे किताबों में है, लेकिन उसको सहज करने के लिए शास्त्रों में भी ये बातें हैं। ब्राह्मण किसको कहा जाता है, अगर पूछते ना ब्राह्मण किसको कहा जाता है, तो ब्रह्मा से ब्राह्मण शब्द आता है, क्योंकि ब्रह्मा की संतान है, और ब्रह्मा से ब्रह्म हो कई कह देते, इसलिए ब्रह्म कुमारी बोल देते हैं। ब्रह्म की तो कोई कुमारियां होती नहीं है, ब्रह्मा की कुमारियां होती है। पर ब्रह्म से कई शब्द कनेक्टेड है, कई शब्द कनेक्टेड है, तो वो सब हम ब्राह्मणों के लिए ही है। तो कौन से शब्द कनेक्टेड है ब्रह्म से या ब्रह्मा से, तो पहला शब्द है ब्रह्म मुहूर्त। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, तो अमृत वेला। तो ब्राह्मण बनना माना अमृत वेला उठना, एक दिन भी छुट्टी नहीं, ब्राह्मणों को एक दिन भी छुट्टी नहीं है। छुट्टी क्या, दुनिया में तो फिर भी एक दिन छुट्टी मिलती है, हमारे लिए एक दिन भी छुट्टी नहीं। रोज अमृत वेले उठना है। कभी ऐसे है कि अभी आज थोड़ा सो जाएं, या नहीं, अमृत वेला उठना है। बाबा पलंग हिलाते हैं, बच्चे उठो बच्चे उठो, मुझे याद करो। तो अमृत वेला उठना अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठना। उस समय भोगी लोग तो सोए होते हैं, परंतु जब भोगी सोते हैं तब योगी जागते हैं। तो हम जो योगी बनते हैं तो पहला लक्षण योगियों का है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अमृत वेला उठना। फिर ब्रह्मा से दूसरा शब्द कौन सा है जुड़ा हुआ, ब्रह्मा भोजन। तो ब्रह्मा भोजन भी जरूर खाना है, शुद्ध भोजन खाना है। पहले तो पता नहीं क्या क्या खाते थे, अशुद्ध आहार खाते थे। अब बाबा ने कहा ये अभी अशुद्ध आहार नहीं खाना है, लहसुन प्याज भी बाबा कहते ये सब तमोगुणी आहार है। और भोजन कौन सा करना है, शिव बाबा की याद में पकाया हुआ बाबा को भोग लगा करके उनको हम फिर स्वीकार करते हैं। गीता में भी आता है कि भगवान ने हमें ये भोजन दिया, तो जिसने दिया अगर हम उसको ऑफर नहीं करते पहले, हम ऐसे खा जाते हैं तो क्या कहेंगे, चोर चोर। क्योंकि जिसने दिया उसको उसका धन्यवाद भी नहीं करते। हाँ बाबा खाते तो है नहीं, लेकिन किसने दिया है तो थैंक्स तो देंगे ना बाबा को। तो बाबा को हम वो प्यार से ऑफर करते हैं, तब वो ब्रह्मा भोजन कहलाता है। तो ब्रह्मा भोजन खाना है, अन्न शुद्ध खाना है, तब मन शुद्ध होगा। फिर तीसरा ब्रह्मा से और कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा जो ज्ञान दिया, सभी वेदों शास्त्रों का सार बताया, वो ब्रह्म ज्ञान भगवान हमें देते हैं, जो वास्तव में बाबा कहते कोई शास्त्रों में नहीं है। इसलिए तो भगवान को आना पड़ा। आज भी बाबा की मुरली में था ना, वो तो ढूंढ ही रहे हैं, सुनी सुनाई बातें ही सुनाते हैं, जो भी शास्त्र सुनाते हैं। ऋषि मुनियों ने लिखे वो कब, चलो फिर उसमें एडिशन हुआ करेक्शन हुआ, सब उसमें से कुछ निकाला, क्या क्या हो गया, तो कई शास्त्र बन गए। पहले गीता तो बहुत छोटी थी, कितनी बड़ी गीता बन गई, कितने और चैप्टर्स के और श्लोक जुड़ते गए। रामायण भी पहले कितना था, फिर कितना बड़ा हो गया। ग्रंथ कितने छोटे होंगे लेकिन कितने बढ़ गए, तो जुड़ते गए। और तो अनेक आत्माओं ने अपना भी उसमें जुड़ाव कर दिया। तो बाबा कहते वो सुनी सुनाई बातें, पर भगवान स्वयं आकर के सुनाते हैं। ईश्वरीय महावाक्य डायरेक्ट भगवान से सुनना, ये तो बाबा कहते इसी समय ही होता है, इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर, इसी को ही ब्रह्म ज्ञान कहेंगे, जो डायरेक्ट शिव परमात्मा ब्रह्मा के मुख से सुनाते हैं, वो सच्चा ब्रह्म ज्ञान हुआ। फिर चौथा ब्रह्म से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो पहला है ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा है ब्रह्म भोज, तीसरा है ब्रह्म तीसरा है ब्रह्म ज्ञान, और चौथा है ब्रह्मचर्य। वास्तव में बाबा कई बार कहते हैं ब्रह्माचार्य, ब्रह्मा ने जो आचरण किया हम उस पर हम चलते हैं। जिसको बाबा कई बार कहते हैं ब्रह्मा बाबा के कदमों पर चलना, बाबा को फॉलो करना, जो बाबा ने कदम उठाए के लिए वो हमको भी लेने हैं। तो ब्रह्मा के कदमों पर कदम रखना, ये है ब्रह्मा का आचरण, उसके अनुसार चलना, वो है वास्तव में ब्रह्माचार्य। परंतु ब्रह्मचर्य में केवल पवित्रता ही आती है, चलो सेलिबस ही है, परंतु ब्रह्माचार्य में तो बहुत कुछ आ जाता है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये सारे सब नियम मर्यादाएं दी, और जैसे हम उनको फॉलो करने लगे तो सच्चे ब्राह्मण बन गए। फिर ब्राह्मणों की और भी कई विशेषताएं बताते हैं। ब्राह्मण उसको कहेंगे जो यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में स्वाहा 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 करते हैं। वो तो जब तिल घी स्वाहा करते हैं। और बाबा कहते हैं तुम्हारे पुराने संस्कार स्वाहा करो, बुराइयां स्वाहा करो, तन मन धन ये बाबा का समझ करके ट्रस्टी होकर रहो। और तो हम करते हैं, फिर दूसरों से भी करवाते हैं। ब्राह्मण क्या करता है, खुद भी स्वाहा करता है और वो जो यजमान होते हैं या और भी होते हैं उनको कहीं आप भी स्वाहा करो, स्वाहा स्वाहा। फिर बाबा कहते हैं पढ़ाई करो। ब्राह्मण किसको कहेंगे, जिसके कच्छ में कुरम, कच्छ में कुरम माना जैसे बगल में किताब, कुरम माना किताब। तो सदा ही बाबा की मुरलियों की जो डायरी है वो हमारे साथ होनी चाहिए हर वक्त, क्योंकि जब भी मौका मिले वो हमें अध्ययन करना है। तो इसीलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो ब्राह्मण की विशेषता क्या है, पढ़ना और पढ़ाना, जो चार वर्ण आते हैं समाज के उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्ण बताते, देवता उस रूप में नहीं बताते, समाज के चार वर्ण हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, धर्म की रक्षा करना, शास्त्र का पठन पाठन तो धर्म की रक्षा करना। फिर क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, देश की रक्षा करना, सरहद पर जाते ना क्षत्रिय। पहले जमाने में जो राजाएं थे वो सब क्षत्रिय ही तो थे, और वो लड़ाई, हाँ लड़ाई करना, सरहद पर जाना, युद्ध करना। तो किससे लड़ना है, विकारों से लड़ना है, लेकिन क्षत्रिय उनको कहते थे जो देश की रक्षा करे। फिर वैश्य किसको कहते हैं, जो पेट की रक्षा करे, है ना, जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनको वैश्य होते हैं अधिकतर, बनिया लोग है ना, तो वो बिजनेसमैन होते हैं। तो पेट की रक्षा, तो धर्म की रक्षा, देश की रक्षा, पेट की रक्षा, और फिर शूद्र। तो शूद्र किसको कहेंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, तो जो नौकरी करते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वेंट, है ना, ऐसे ही कहते हैं ना, तो इसीलिए वो शूद्र कहलाते हैं। लेकिन ये समाज के चार वर्ण हैं, पर बाबा इसको बेहद में ले जाते हैं कि ब्राह्मण इस संगम पर बनते हैं, पर ब्राह्मण देवता, ये भी गायन है। किसी ब्राह्मण को बुलाएंगे ना तो ऐसे नहीं कहेंगे ये ब्राह्मण, ब्राह्मण देवता, देवता जरूर साथ में जोड़ते हैं। तो ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। तो ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए बाबा हमको ये सारे नियम मर्यादा बताते हैं। तो जब ब्राह्मण हम बन गए, फिर और आगे लक्ष्य क्या है, उसके आगे लक्ष्य क्या है, हाँ फरिश्ता तो बाद में, और उसके बाद क्या लक्ष्य है, क्योंकि ब्रह्मा समान बनना है। तो ब्रह्मा समान बनना माना ब्रह्मा संपूर्ण बने, तो हमें संपूर्ण बनना है। मुरली अध्ययन किया, उसको धारण किया, परंतु फिर आगे लक्ष्य क्या है, ब्रह्मा बाप समान बनना, उनके कदमों पर चल करके उनके समान बनना। तो अभी हम कौन सा पुरुषार्थ करते हैं, बाप समान, बाप समान, बाप समान बनना है, यही बाबा हमको लक्ष्य देते हैं। तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही हमको करना है, जो ब्रह्मा बाबा ने नहीं किया वो हमको नहीं करना है। तो कैसे पता चले कि ब्रह्मा बाबा ने जो किया वही कर रहे हैं, तो अपने लिए अंदर टेस्ट है, अपना निरीक्षण करना है कि अगर ये बोल जो मैं बोलने जा रही हूँ, जा रहा हूँ, ये ब्रह्मा बाबा अगर होते तो ऐसे बोलते, ब्रह्मा बाबा होते तो ऐसे करते, ब्रह्मा बाबा होते तो ऐसे सोचते। तो सोचना बोलना करना वो ब्रह्मा बाप समान हो, है ना। तो ब्रह्मा बाप समान माना ब्रह्मा ने जो किया वो हमको करना है। आज भी मुरली में आया, कई कहते हैं ना कि कोई पूछते हैं बाबा को कभी गुस्सा आता था, तो क्या कहा, बाबा को कभी गुस्सा नहीं आता था। बाबा के पास ऐसे बेधड़क होके जाते थे और कुछ बहनें रोकती थी, अभी बाबा के पास नहीं जाना है। हाँ, जैसे दादियों के पास भी हम जाते, नहीं दादी अभी भोजन कर रहे, अभी नहीं जाना है, लेकिन दादी देखती थी कोई आए, आओ 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 आओ। हाँ, परंतु वो जो ब्राह्मणी होती थी वो थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होती थी। तो बाबा के आगे भी लच्छू बहन थी, वो लच्छू बहन बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, अभी नहीं जाना है, अभी अभी बाबा विश्राम कर रहे, अभी बाबा भोजन कर रहे, अभी नहीं जाना है। लेकिन बाबा देखते थे, आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे, तो ऐसे आओ बच्चे, तो बच्चे इतने खुश हो जाते थे। हाँ, इस पर बाबा ने कभी भी क्रोध नहीं किया। बाबा समझाते जरूर थे, बच्चे ऐसे नहीं करो, बच्चे ऐसे नहीं करो, हाँ बच्चे ऐसे करो, परंतु गुस्सा करना ये कभी बाबा के मुख से नहीं निकला। परंतु बच्चों के मुख से तो निकल आता है ना गुस्सा, तो गुस्सा कभी धीरे से किया जाता है क्या? गुस्सा कैसे किया जाता है? जोर से किया जाता है ना। अब इतना नजदीक है और इतना जोर से गुस्सा कर रहे, तो धीरे भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि वो तो आप उसको ही सुना रहे। नहीं, लेकिन गुस्सा बना जोर से करना। तो बाबा ने हमको क्या उसके लिए नारा दिया, कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो, क्योंकि ये तीनों का आपस में संबंध है। और बाबा के अंदर ये बहुत विशेषताएं थी, कम बोलते थे बाबा, ज्यादा नहीं बोलते थे, कम बोलना, धीरे बोलना, फिर मधुर बोलना। क्योंकि कम बोलने का लक्ष्य होगा तो धीरे बोलेंगे, धीरे बोलने का लक्ष्य होगा तो मधुर बोलेंगे, और उसका रिवर्स भी है, अगर मधुर बोलने का लक्ष्य होगा तो धीरे बोलेंगे, और धीरे बोलने का लक्ष्य होगा तो कम बोलेंगे। और गुस्से में कितना जोर जोर से बोलते और कितना बोल लेते हैं, जो जरूरत नहीं है इतना बोलने की, लेकिन बोल देते हैं। गुस्से में आकर कंट्रोल मुख का खत्म हो जाता है, तो सोच भी इतने चलते हैं, मुख भी इतना चलता है। और बाबा कई बार कहते हैं कि वो जो व्यर्थ कर्म भी कितने हो जाते हैं, परंतु हमारे कर्मों पर भी कंट्रोल हो, आत्मा मालिक बन करके इंद्रियों को चलाए, करावनहार बन करके इंद्रियों को कर्म कराए। तो ये जो बाबा हमें शिक्षाएं देते हैं ये इसलिए है ताकि हम बाप समान बन सके। फिर बाप समान में और क्या शब्द आते हैं, संपूर्ण और संपन्न, ये दो शब्द बाप समान के साथ जुड़ जाते हैं। संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है। तो कई पूछते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, संपन्न और संपूर्ण में अंतर क्या है, एक ही चीज है या दो अलग अलग अर्थ है? क्या कहेंगे जी? अलग अलग अर्थ है। तो संपन्न किसको कहेंगे, जैसे चंद्रमा जब पूर्णमासी होती है तो चंद्रमा संपन्न भी होता है और संपूर्ण भी होता है। तो संपन्न माना प्रकाश में संपन्न, एकदम फुल लाइट होती है चंद्रमा की जब पूर्णमासी की रात होती है, तो प्रकाश में फुल, इसको कहेंगे संपन्न। और फिर गोल आकार में संपूर्ण, क्योंकि बाकी जितने भी दिन होते हैं वो आकार गोल नहीं होता है, कुछ न कुछ क्रिसेंट माना आधा आधा हुआ या जो भी हुआ, लेकिन पूर्णमासी माना पूरा गोल, 14 आएगी तो भी थोड़ा कम होगा, फिर पूनम के बाद फिर एक कब आया तो फिर और थोड़ा फिर कम हो जाएगा, लेकिन पूर्णमासी फुल। तो हमें संपन्न भी बनना है, संपूर्ण भी बनना है, एक बहुत बड़ा लक्ष्य है बाप समान बनने के लिए। तो प्रकाश में संपन्न, ज्ञान का इतना प्रकाश हमारे अंदर हो, जिसको बाबा कहते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मैं सारा ज्ञान बच्चों को देता हूँ, तो पूरा ज्ञान मास्टर ज्ञान सागर बन जाते, जो आज भी बाबा ने कहा लाइट और माइट। हम लोग, मुझे याद है कई साल पहले कैसे हम लोग इस पर भाषण करते थे कि ज्ञान से लाइट क्या मिली, माइट क्या मिली, आत्मा के ज्ञान से लाइट क्या मिली, रोशनी क्या मिली और शक्ति क्या मिली। इस पर बहुत मनन चिंतन करते थे और लेक्चर देते थे। परमात्मा के ज्ञान से प्रकाश क्या मिला और शक्ति क्या मिली, चक्र के ज्ञान से प्रकाश क्या मिला, शक्ति क्या मिली, लाइट और माइट जो बाबा कहते हैं। तो इस प्रकार से विचार सागर मंथन करते थे। तो संपन्न माना वो लाइट में संपन्न, और संपूर्ण माना आकार में संपूर्ण अर्थात पवित्रता में संपूर्ण। इसलिए देवताओं को क्या कहते हैं, सर्व गुण संपन्न, और 16 कला संपूर्ण। तो गुणों में संपन्न, क्योंकि ज्ञान भी एक गुण है ना, ज्ञान भी आत्मा का एक गुण है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये जो 7 मूल गुण बताते हैं उसमें ज्ञान पहला गुण है, और फिर शक्ति, तो उसका माइट, उसकी ताकत, और फिर हाँ बाबा कहते हैं तो इन गुणों में संपन्न और आकार में संपूर्ण माना 16 कला संपूर्ण, पवित्रता की कलाएं। क्योंकि 16 दिन लगते हैं अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक, 16 दिन लगते हैं, फिर पूर्णमासी से अमावस्या आने तक फिर 16 दिन लगते हैं। इसलिए भारत में जो करेंसी थी पहले, तो उसमें 16 माना 100%, 16 आना सच ऐसे कहते हैं ना, तो 16 आना। फिर तो करेंसी बदल गई, जो 100 पैसे हो गए 1 रुपए में, नहीं तो 16 आना। तो देखो बाबा भी हमको कहते हैं 16 कला संपूर्ण, पवित्रता की कलाएं बिल्कुल संपूर्ण, इतनी संपूर्ण जो बाबा कहते हैं कि मनसा भी नहीं आए, कोई भी विकृति नहीं, पर मनसा से भी सूक्ष्म बाबा कहते हैं स्वप्न, मन में क्या सोचते हैं वो फिर भी हमारे कंट्रोल में है। अगर हम नहीं सोचना चाहें हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं सोचना है नहीं, फुल स्टॉप ब्रेक। लेकिन स्वप्न हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, वो स्वप्न किस आधार पर आते हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों, जो कर्म के संस्कार बने उसके आधार से वो स्वप्न आते हैं। तो स्वप्न हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर जब कहते हैं संपूर्ण पवित्र अर्थात स्वप्न भी इतने शुद्ध, इतने पवित्र हो, स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं, तब हम कहेंगे संपूर्ण। तो सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण, इसको कहेंगे बाप समान, संपन्न और संपूर्ण। फिर उसके बाद बाप समान बने, उसके और भी कई हैं बातें हैं बाप समान बनने के लिए, जो बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना। तो ये भी कई पूछते हैं शुभ भावना और शुभ कामना में अंतर क्या है, एक ही जैसा लगता है शुभ भावना शुभ कामना, तो बहुत अंतर है शुभ भावना और शुभ कामना। तो शुभ भावना है वर्तमान के लिए, कोई किसके लिए कहते ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, तो हम क्या कहेंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं है, शुभ भावना रखो, अच्छा है ये, अच्छा है। तो शुभ भावना माना उसके लिए हमारी भावना बहुत अच्छी है, वो ऐसा बुरा नहीं है। और शुभ कामना, शुभ कामना माना जैसे भविष्य के लिए कामना, जैसे गुड विशेस देते हैं ना, तो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है गुड फीलिंग्स एंड गुड विशेस। तो गुड फीलिंग्स माना अच्छी फीलिंग है उसके लिए, हमारी भावना बहुत अच्छी है, और गुड विशेस माना उसके लिए हम कामयाबी सोच रहे हैं कि ये कामयाब हो जाएगा, गुड विशेस। तो इसीलिए हर एक के लिए शुभ भावना, शुभकामना, ये बहुत अच्छा है और ये आगे बढ़ेगा, ये है शुभ भावना और शुभकामना। फिर बाबा कहते हैं योग में तुमको ये तीन शब्द बाबा देते हैं, ये भी हमारी हमारे पुरुषार्थ का स्वरूप है। कौन से वो तीन शब्द? देही अभिमानी, फिर दूसरा शब्द है अव्यक्त स्थिति, विदेही स्थिति। तो देही अभिमानी स्थिति, विदेही स्थिति और शरीरी स्थिति, ये तीन शब्द बाबा हमेशा उच्चारण करते हैं। तीनों में भी अंतर है। देही अभिमानी स्थिति किसको कहेंगे? देही अभिमानी स्थिति माना कर्म करते मैं आत्मा इस शरीर के इंद्रियों द्वारा कर रही हूं, वो सच्चा कर्म योगी आत्मा समझकर बाबा को याद भी कर रहे हैं और कर्म भी कर रहे हैं, वो सच्चा कर्म योगी स्थिति वो देही अभिमानी स्थिति है। फिर विदेही स्थिति किसको कहेंगे? जो राजा जनक की बात कही तो राजा जनक विदेही राजा थे। विदेही राजा थे माना इतने बड़े महल में रहते थे लेकिन उसका मोह नहीं था, है ना? तो मोह नहीं था तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। विदेही स्थिति माना छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ करना है लेकिन उसका उसके प्रति जो मोह है वो हटाना है, बस छोड़ना कुछ भी नहीं है पर फंसना भी कहीं नहीं है। तो कब नहीं फंसेंगे? जब मोह नहीं होगा। अगर मोह होगा तो फंस गए, तो छोड़ना भी नहीं और फंसना भी नहीं। और तीसरा क्या नहीं करना है? नया जोड़ना भी नहीं, बाबा कहते हैं नया जोड़ना भी नहीं, क्योंकि नया जोड़ दिया तो फंस गए ना, इसीलिए नया भी नहीं जोड़ना है। अब दो दुकान है, तीसरा दुकान भी मैं खोल रहा हूं, जरूरत नहीं है। बाबा कहते बस राजी रहो, राजी रहो, क्योंकि अभी कितना जमा करना है, कितना खाना है, पेट को तो दो रोटी चाहिए। तो संतुष्ट आत्मा होकर के रहना, फंसना नहीं, छोड़ना भी नहीं, नया जोड़ना भी नहीं। तो चौथा क्या करना है? करना क्या है? नहीं करना वो तो पालम, फंसना नहीं है, छोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है, तो करना क्या है? चौथा क्या आता है? निभाना है। हाँ, तोड़ निभाना है, तो निभाना है, क्योंकि छोड़ेंगे तो भी हिसाब किताब तो है, फिर वो खींचेंगे हिसाब किताब, और फंसेंगे तो और हिसाब किताब बना लेंगे। तो बाबा कहते हैं जो बने हुए हैं उसको भी तो खत्म करना है, तो नया कोई ऐसा पाप कर्म भी नहीं करना है। जो खाता हमारा बने, और अगर बना तो बाबा कहते हैं बाबा के ब्राह्मण बच्चे बने तो 100 गुना सजा है, फिर अज्ञान काल में थे तो फिर भी 1 गुना सजा, पर समझ करके ज्ञान होते हुए किया तो 100 गुना सजा है। बिल्कुल, तो 100 गुना सजा की बजाय हम करें क्यों? और जो 63 जन्मों का पापों का हिसाब किताब है वो हमें चुकतू भी करना है। जैसे किसी के सिर पर बहुत कर्जा हो, मानो मिसाल दे सकते हैं, कर्जा हो तो वो इतना उसको कमाना है जो कर्जा भी चुकतू करना है, फिर इतना कमाना है जो आगे के लिए जमा भी करना है। तो कर्जा भी चुकतू करना है पिछले 63 जन्मों का, और 21 जन्मों की कमाई भी करनी है, तो कितना कमाना पड़ेगा? हाँ, एक मिनट भी फुर्सत मिलेगी आराम करने लिए? नहीं, इतना कमाना है। तो इसीलिए निभाना भी है, क्योंकि जो 63 जन्मों का हिसाब किताब है वो अभी चुकतू हुआ नहीं है। कुछ योग बल से कुछ हिसाब किताब चुकतू करने हैं, कर्म जो शरीर का हिसाब किताब है। बाबा ने उस दिन का ये कर्म भोग शब्द भी नहीं बोलो, क्योंकि भोग शब्द का कर्म भोग ये जैसे भोगना है, लेकिन हमारे लिए कर्मों का हिसाब किताब, जो शरीर का भी रोग है उसको हम भोगना नहीं कहते हैं। भोगना नहीं है, पर क्या है, क्या है, चुक्तु करना है। हाँ, जब बड़ी दीदी ने शरीर छोड़ा था तो 21 दिन तक बड़ी दीदी, अभी ये दीदी का महीना है ना, 28 जुलाई को दीदी ने शरीर छोड़ा था 1983 में, तो जब 21 दिन दीदी कोमा में थी, क्योंकि ब्रेन की सर्जरी हुई थी, वहाँ छोटा सा ट्यूमर था, पर ट्यूमर तो चलो निकाला, थोड़ी जागृत भी हुई, परंतु ऑक्सीजन ब्रेन में पहुँचा नहीं इतना, तो वो कोमा स्टेट में थी, पर फुल कोमा भी नहीं था, सेमी कोमा, क्योंकि वो आंखें तो बंद होती थी परंतु कुछ बोलती थी, अभी क्या बोल रही है समझ में नहीं आता था, लेकिन कुछ बोलती थी, कुछ इशारे करती थी, ऐसे एक्शन करती थी, बस इतना ही। तो जब दीदी ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने जो संदेश दिया वो बड़ा विचित्र था, बहुत ही विचित्र संदेश था। बाबा ने क्या कहा, ये भोगना नहीं थी, जो 21 दिन वो सेमी कोमा में थी, ये भोगना नहीं थी, एक योजना थी। अब क्या योजना थी, योजना क्या थी, तो बाबा से पूछा गया, बाबा क्योंकि हम लोगों ने बहुत योग किया था, सारा 24 घंटा यहाँ बाबा के कमरे में तपस्या चलती थी उन दिनों में, हाँ दीदी के निमित्त पूरा एकदम ऐसा पावरफुल वातावरण हो गया था, तो दादी ने बाबा से पूछा कि बाबा इतना सारा हमने जो योग किया तो फिर भी दीदी शरीर छोड़ा, तो बाबा ने पता है क्या कहा, बाबा ने कहा जो आपने योग किया वो जो उस आत्मा की जो माँ बनने वाली है, अभी नया जन्म लेगी, उसका गर्भ पवित्र हो गया। अब बताओ गर्भ पवित्र हो गया, ये हम तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो एडवांस पार्टी की आत्मा थी, तो गर्भ पवित्र हो गया आपके योग से। फिर बताया कि क्योंकि डॉक्टर का नाम भगवती था, तो बाबा ने कहा न भगवती का दोष न भगवान का दोष, वो डॉक्टर भगवती है उसका भी दोष क्या, परंतु ये निश्चित था, कोई भी कार्य देखो है तो ड्रामा अनुसार, पर कैसे बुद्धि बदल जाती, क्योंकि ड्रामा में नूंद है। हमारी चंद्रमणि दादी कैसे गई, चंद्रमणि दादी बेंगलोर में थी सारा दिन सेवा की, लेकिन उनको चेस्ट में पेन था, अटैक आ चुका था, लेकिन धीरे धीरे सहन करती रही। और विजय बहन थी ना उनके साथ, चंद्रमणि दादी के साथ, तो वो यही कहे कि दादी नहीं गैस है, क्योंकि कभी लगता है ना यहाँ पर थोड़ी छाती में दर्द होता है, गैस के कारण भी होता है, गैस है। लेकिन किसी को भी ये संकल्प नहीं आया कि इनका कुछ ECG किया जाए, डॉक्टर को दिखाया जाए, और दादी कहे कि बहुत दर्द है। फिर लास्ट में सीढ़ियाँ भी चढ़ाई दादी को, क्योंकि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर उनका कमरा था, दादी कुछ नहीं है, गैस है। और फिर 10 बजे रात को, पूरा दिन चला, और रात को जैसे कमरे में पहुंची और स्नान आदि करके आई, और आत्मा ने शरीर छोड़ा। भले उस समय डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा टू लेट, ECG भी लेकर के आए, लेकिन तो सारा दिन तो कुछ किया ही नहीं। तो जब संदेश आया तो बाबा ने संदेश में क्या कहा, उस समय बाबा ने कहा ये ड्रामा में निश्चित था, इसलिए किसी की भी बुद्धि में नहीं आया कि हम डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि गैस है, यही सोचा। तो ये सब ड्रामा कल्याणकारी है, और उस अनुसार देखो हर ड्रामा की सीन चलती है। तो बाप समान बनकर फिर फरिश्ता बनना है, जैसे ब्रह्मा बाबा अभी फरिश्ता वतन में इंतजार कर रहे हैं हम बच्चों का, कि कब बच्चे तैयार हो तो एक साथ परम धाम के गेट खोले तो इसी फिर परम धाम जाना है, फिर सतयुग में आना है। तो क्या है हमारा उद्देश्य, कितने लक्ष्य, ये सब लक्ष्य पार करते 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 उस उद्देश्य तक पहुंचना है। घर जाना भी जरूरी है क्योंकि फिर सब कुछ न्यूट्रल करना है। घर जाएंगे तो यह इस समय का सब कुछ भूल जाएंगे, बिल्कुल न्यूट्रल जीरो तक पहुंचना है, फिर नए सिर सब शुरू करना है। लेकिन श्रेष्ठ कर्मों के जो संस्कार है वो आत्मा तो ले जाएगी, पुण्य कर्म ले जाएगी, तो वही फिर हमारे लिए भविष्य का आधार बनेगा। चलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी मानसिकता बना दी कि कितना प्योर थॉट्स में स्थित कर दिया, सारी बातें क्लियर की। एक हाथ की ताली से दीदी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करेंगे। अभी आमंत्रित करती हूँ आदरणीय निरंजन भाई जी, मधुरवाणी ग्रुप के सतीश भाई जी और उनका ग्रुप। नीचे भी भट्टियां चल रही हैं आमंत्रित भाइयों की और टीचर्स बहनों की, तो आप निरंजन भाई हमारे बीच उपस्थित हैं। आप 93 से ज्ञान में चल रहे हैं और पिछले 25 वर्षों से ग्लोबल हॉस्पिटल के किचन डिपार्टमेंट में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आप सबके स्वागत में स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे आदरणीय निरंजन भाई जी।
ओम शांति, आप सबका मधुबन में हार्दिक अभिनंदन है। आज खुशी है मुझे मौका मिला कि अकेले आपकी वेलकम करने का। बने यह यादगार भट्टी, बने यह यादगार भट्टी, ऐसी शक्ति भरनी है, तपस्या 14 वर्ष वाली 4 दिन में ही करनी है, तपस्या 14 वर्ष वाली 4 दिन में ही करनी है।
आज फिर मधुबन मुस्काया, तपस्वी रत्नों को पाया, आज फिर मधुबन मुस्काया, तपस्वी रत्नों को पाया। सुदस बहन गुरुग्राम लाई, किरण बहन संकुल आया, आज फिर मधुबन मुस्काया, तपस्वी रत्नों को पाया। सुजस बहन गुरुग्राम लाई, किरण बहन संग कुल आया, आज फिर मधुबन मुस्काया, तपस्वी रत्नों को पाया। मिला मौका है मधुबन में भाग्य से भट्टी करने का, मिला मौका है मधुबन में भाग्य से भट्टी करने का। उसमें सोने पे सुहागा है पांडव भवन में रहने का, मिला मौका है मधुबन में भाग्य से भट्टी करने का। उस पे सोने पे सुहागा है पांडव भवन में रहने का। दीदी के दिनों पर आए, दीदी के दिनों पर आए, बाबा ने पुष्प बरसाया, आज फिर मधुबन मुस्काया, तपस्वी रत्नों को पाया। सुदेश बहन गुरुग्राम लाई, किरण बहन संग कुल आया, आज फिर मधुबन मुस्काया।
बुलाकर मधुबन भट्टी में बाबा भरपूर करते हैं, बुलाकर मधुबन भट्टी में बाबा भरपूर करते हैं, मधुर वाणी में स्वागत कर थकावट दूर करते हैं। बुलाकर मधुबन भट्टी में बाबा भरपूर करते हैं, मधुर वाणी में स्वागत कर थकावट दूर करते हैं। अपने घर में करो विश्राम, अपने घरों में करो विश्राम, चारों धाम ने गाया है आज फिर, आज फिर, आज फिर मधुबन मुस्काया, तपस्वी रत्नों को पाया, सुदत बहन गुरुग्राम लाई, किरण बहन संग कुल आया, आज फिर मधुबन मुस्काया। बने यह यादगार भट्टी यहाँ से शक्ति भरनी है, बने यह यादगार भट्टी यहाँ से शक्ति भरनी है, तपस्या 14 बरस वाली 4 दिन में ही करनी है। बने यह यादगार भट्टी यहाँ से शक्ति भरनी है, तपस्या 14 बरस वाली 4 दिन में ही करनी है। सची दीदी सिलू दीदी, सची दीदी सिलू दीदी, संग सुन दीदी बुलाया है आज फिर, आज फिर, आज फिर मधुबन मुस्काया, तपस्वी रत्नों को पाया, सुदस बहन गुरुग्राम लाई, किरण बहन संग कुलु आया, आज फिर मधुबन मुस्काया, तपस्वी रत्नों को पाया, आज फिर मधुबन मुस्काया, तपस्वी रत्नों को पाया, आज फिर मधुबन मुस्काया, तपस्वी रत्नों को पाया।